राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
हरदम बदलती है और परमात्मा कभी नहीं बदलते। ऐसे संसार और शरीर बदलता है, मनुष्य परमात्मा जो जीवात्मा वो कभी नहीं बदलता। उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। उसको प्राप्त करना चाहे तो सबसे शून्यता से इसको प्राप्त कर सकता है, केवल चाहना हो। सांसारिक नाशवान पदार्थों की चाहना, वो चाहना इसमें बाधक है। नाशवान में लगा हुआ अविनाशी में जा नहीं सकता, परंतु वास्तव में नाशवान है वो वास्तविकता नहीं है। तो नाशवान है, नाश ही है, उसका तो अभाव होगा। और तत्व वो अविनाशी है, उसमें कोई विकृति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। अगर ये उसी तरफ ख्याल रखे कि परमात्मा सब जगह सब समय में सबके लिए सब काल में सब परिस्थितियों में परिपूर्ण है, वही हमारा है। तो ये परिस्थितियां जो बदलती है, घटना बदलती है, अवस्था बदलती है, व्यक्तियां बदलती है, ये बदलने वाले अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप न बदलने वाला है। मनुष्य मिलाकर कहता है, ठीक विवेक नहीं करता कि मैं वही हूं जो बालकपन में था। तो बालकपन में था वही मैं हूं, इसको प्रत्यय भी किया कहते हैं, मानो वही मैं हूं। तो ये उसके खुद के स्वरूप को कहता है। कल जैसे कहा ना, भूता भूता प्रलीय थे भूतग्राम अश्रय, तो भूतवा भूतवा प्रलय, ये तो होकर मिटता होता है, मिटता है, होता है, मिटता है, परंतु प्राणी वही है। इसी जो सत्ता है स्वयं की, उसको ही परमात्मा का अर्थ कहते हैं। ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। वो भगवत स्वरूप ही है, चेतन है, मर रहित है, सहज ही सुख स्वरूप है, अविनाशी है, वो साक्षात परमात्मा का अंश है, वो है भी है। सो माया बस भयो गुसाई, बंदो की मर कटे जाई, माया बस में हो गया है नहीं, और हरदम रहता भी नहीं। शरीर है ये बदलेगा, परंतु स्वयं बदलेगा नहीं। शरीर के साथ अपने को मान करके शरीर के बदलने को अपने में आरोप कर देता है, तो मालूम होता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं धर्मनिर्धन हो गया, मैं धनी हो गया, ऐसे उसमें आरोप कर देता है। परंतु धनी हो चाहे निर्धन हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, बालक हो चाहे बूढ़ा हो, वो जो है रूप सत्ता रूप है वही है। उसमें बालक, सवालक, बूढ़ा, धनी निर्धन रोगी निरोगी ये नहीं है, तो अटल रूप है वो, सदा ही रहेगा। अनंत युग बीत जाएंगे तो भी उनका स्वरूप वैसे ही रहेगा, परंतु वे जब तक उत्पन्न और नष्ट होने तो उस तत्व को प्राप्त नहीं होगा, नित्य प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त होगा। इस सर्वज्ञ मुनि ने कहा है, सन्न प्यसन्न पर पुरुष पुराशित, सन्न प्यसन्न होता हुआ भी नहीं की तरह था, हम कुछ पता ही नहीं, हम तो दुख पाते हैं, ऐसे बनते हैं दुख पाते हैं। तो बिना गुरु कृपा के, बिना संतों की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के उसको जान सकता नहीं। खुद उन्मुक्त अपनी चाहिए और कृपा भगवान की है, कृपा तो भगवान की सबको मिलती है समान रूप से, सब पर मोरी बराबरी दया, भगवान के अंदर सब पर मेरी मनु पर दया है। पर सन्मुख हुए जीव मुहि जब ही जन्म कोट यज्ञा सही, तब ही उस तत्व के जब सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख होना इसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि यह स्वयं विमुख हुआ है, विमुख हुआ इस बात से सन्मुख होना इसकी लागू पड़ गया। अगर परमात्मा से विमुख न होता, नाशवान को महत्व न देता, तो कुछ करना नहीं था, वो तो है ही स्वतः, ये गलती करी है। इस गलती से छूटने के लिए सुगम और बढ़िया उपाय गीता ने बताया, सेवा करना, कर्मयोग को बढ़िया बताया, तो उसको कर्म संदासात कर्मयोग को विशेष थे, दूसरों की सेवा करना, औरों को सुख पहुंचाना। तो ये आदत होने से अपने संग्रह और सुख भोग की इच्छा मिट जाती है, ये इच्छा मिटने से ठीक हो जाता है, ये इच्छा जब तो रहेगी सुख की, आदर की, सुविधा की, आराम की, सुख निर्वाह की, ये जब तक दारसा रहेगी तब तक पारमार्थिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी। बातें सीख सकते हैं, ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और स्वयं भी ग्रंथ लिख सकते हैं, पर जब तक संयोग जन्य सुख की आसक्ति है, सुख सुविधा की आसक्ति है, आराम से जीने की आसक्ति है, तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति और भावे विषय कमाए। कबीर मनवा एक मन है, भावे भगवान में लगा दो, चाहे संसार के भोगों में संग्रह में लगा दो, दोनों नहीं होगा। इसमें एक बात विलक्षण है कि संसार के भोगों में कितना ही रसपत जाए, कितना ही विभव पा गए, तो भी भीतर से परमात्म तत्व की जो इच्छा है वो मिटती नहीं, दब जाती है। परंतु पारमार्थिक उन्नति कर देता है तो ये संसार के भोगों की, राज्य की, सुख की, संग्रह की इच्छा है, ये मिट जाती है, क्योंकि ये असत है, ये अनित्य है, नाशवान है, और परमात्मा अविनाशी है, उसकी लालसा भी अविनाशी है, वो मिटती नहीं है। जब जब जाती है मानो इसकी कोई इच्छा है ही नहीं, मुक्ति की इच्छा नहीं है, मन परमात्मा की प्राप्ति चाहता ही नहीं, ऐसा मालूम देगा, परंतु भीतर से वो मिटेगी नहीं, क्योंकि सत्य है। और ये संसार की कितनी आसक्ति, कितनी कामना, कितना ही वैभव, कितने ही भोग कितना ही संग्रह मिल जाए इनसे तृप्ति नहीं होगी, ये टिका लगे, ये बड़ी आफत हो गई, एक बड़ी बड़ी आफत हो गई। स्वयं तो मिटता नहीं और संसार टिकता नहीं, और संसार को टिकाना चाहता है, मनमानी चाहता है, ये असंभव है। परंतु तो बाढ़ पड़ गई, इस तरह की आदत पड़ गई कि धनी बढ़ जाए, भोगी बढ़ जाए, सुखी हो जाए, वाह वाह हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, लोग हमारा आदर करे, इस सुख भोग की महिमा की आदर की जो एक चाट लगी है ना, ये बहुत भयंकर है। ये परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी भारी बाधा है। तो हरेक भाई बहन को चाहिए इनसे सावधान रहो, भाई संसार का सुख पहुंचाना है, अपने लेना नहीं है। संसार की सामग्री हमारे पास हो तो दूसरों की सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। यही तरु कर फल विषय ने भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति होते स्वर्ग और स्वर्ग तो अंत दुखदायी, पर थोड़ी अंत दुख मिलेगा, अंत में आपत्ति होगी, क्योंकि वो चीज ठहरेगी नहीं और आदत बिगड़ जाएगी उन पदार्थों के सेवन की, वो आदत फिर बड़ी भाई भयंकर हो जाएगी, वो दुख देगी। इस वास्ते मनुष्य अपने ये कृत्रिम जो आदत है, स्वभाव अपना बया है, परम दिन का काम का क्रोध का लोभ का आदि जो स्वभाव बना है, ये स्वभाव उसका है, ये स्वभाव सुधरेगा। वास्तविक जो इसका तत्व है वो बदले नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। सत्ता कभी बदल नहीं सकती, सत्ता कभी असत नहीं हो सकती। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होगा, वो सत ही रहेगा, सत ही। परंतु उसके अनुभव के बिना सत की प्राप्ति अप्राप्ति हो रही है, होते हुए भी नहीं गति रहे। सन्न प्यसन्न पुरुष पराशी, पहले होता हुआ परमात्मा नहीं गति रहा है ही नहीं। सबसे प्रत्यक्ष परमात्मा है, सबसे विशेष सत्ता परमात्मा की है, सब जगह जो कुछ विभूति आती है उसी की आती है, उसी से यद यद विभूति मतलब श्रीमद मूर्जित में हुआ तत्व देवा भगत हम तेजो से संभव, भगवान के तेज से अंश में उत्पन्न होता है। परंतु उसको न जानने से ये बाहर का ही ले देता है तो ये फंस जाता है, उस तत्व को प्राप्त नहीं करता, बड़ी दूर दिशा में पराजित पाए। इस वास्ते इसका त्याग करे, त्यागा शांति रटन धर्म, क्योंकि शांति स्वतः सिद्ध है, इसके पकड़ने से अशांति पैदा हुई है। असत वस्तुओं के संग्रह से और असत वस्तुओं के सुख भोगने से संग्रह की सुख भोग की इच्छा हो गई। अब ये इच्छा तब से परमात्मा में अत्र नहीं हो, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना तया प्रशंसा, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, और ये पुष्पित वाणी जो स्वर्ग में ऐसा सुख है वो ऐसा सुख है ऐसा ये, उससे चित हट जाता है, उसके परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होती। बस परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसा व्यवसायत्मक बुद्धि उसकी होती नहीं, अपने तेज साफ है वो। कहीं माया पर ज्ञाना, कई माया पर ज्ञाना, कई काम स्थिति ज्ञाना, वे जो ज्ञान माया से अवृत हो गया, कामनाओं से अवृत हो गया, आपकी समझ वो नष्ट हो गई कामनाओं के कारण से, माया के कारण से, मूर्ता के कारण से, मोहितम जगत ये तीनों गुणों से मोहित होकर गए, ऐसा हो गया। तीनों गुणों से मोहित को रामायण में सन्निपात कहा है। वातज पित्त कफज जो रोग होते हैं वो फिर भी सुशांति होते हैं और तीनों दोष जब प्रीति के जब तीनों भाई उपदेश सन्निपात उदाई तो ये सन्निपात त्रिदोषी होता है वो तीन दोषात होते ऐसे बात फिर कब दे जैसे सत्व स्तम ये अहंकार ममता है ये खास है त्रिदोष है ये तो इसे दूर होना बड़ा कठिन है। भगवान के शरण हो जाए और अच्छे कोई संत महात्मा सुनते वो मिल जाए ठीक उनके खुद भी सुलझा है और उनको रास्ता ठीक मालूम होता है ऐसे कोई मिल जाए तो सुलझा दे नहीं तो हरेक है सुलझता भी है। शास्त्रों की बातें कितनी कह लो सुन लो समझ लो मनन कर लो फिर भी वो बात क्या कह आप मालूम समझ गए मख में नहीं आती बात कब्जे में नहीं आती अधिकार नहीं होता इस पर चाहते हुए समझते हुए भी सुनते हुए भी वो बात कब्जे में नहीं आती अधिकार में नहीं आती क्यों भोग ऐश्वर्य आसक्ति अरे भोग की ऐश्वर्य आसक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसन्न पाना संग्रह करना सुख होना इसकी एक आसक्ति बीच पड़ी है एक अत्याप्रम फिर और बढ़िया बढ़िया भोग है बहुत बढ़िया बढ़िया सुख रह गए ऐसे उसमें फिर अपृत हो गया तो ये काम से हृदय ज्यादा वो परमात्मा के शरण नहीं होते परंतु अन्य देवता अन्य देवता हो जाएंगे परमात्मा के थ्रू नहीं चले गए ये भोग है ऐश्वर्य आसक्ति है इससे फिर सुधारा है कम से कम पहले समझ लो इस बात को समझ में नहीं हाँ अपना उद्देश्य बना लेते हैं कि धन इकट्ठा करना है ऐसा आदमी करना है ऐसी सामग्री जुटाना है जिससे आराम से रहे सुख भोग पूर्वक रहे आराम से ये उद्देश्य बनाने का उद्देश्य हो गया। अब त्याग कैसे हो त्याग की बात दूर रही लक्ष्य बन गया कि पैसे भी पास में हो और रहन सहन की सामग्री भी आराम की हो जीवन भी आराम पूर्वक बीते ऐसी इच्छा रहने से बार बार तीन निर्णय नहीं होता सत्संग सुनने से पक्का विचार हो जाता है पक्का जैसे ही हो जाता है पक्का रहता नहीं अब भगवान भजन करेंगे अब ऐसा ही करेंगे ऐसी बात होती है परंतु उसे छूटने के बाद में वैसा भाव रहता ही नहीं क्यों नहीं रहता कि उसका महत्व सुख भोग का और संग्रह का महत्व हृदय में अंकित है उनको एक आदर दिया हुआ है वो महत्व टिकने नहीं देता भगवत भजन में तत्परता से लगने में टिकने नहीं देता ज्यादा बात होने से तो सत्संग में इतनी टिक सके हो असली ठीक सत्संग होती उसमें भी टिक सकेगा नहीं टिक जाए तो सुधर जाएगा नहीं तो टिकेगा नहीं वह उसका मन लगेगा नहीं भीतर में जो सुख की सामग्री है सामग्री को महत्व दिया है ना वो सुख सामग्री नहीं मिलेगी आदर नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। इसमें एक बात याद आ गई संतों की हुई ये साधु में कमजोरी ज्यादा रहती है ग्रस्त है वो तो कुटुंब में फंसा रहता है बेचारा प्रतिकूल होने पर भी क्या करे और साधु में थोड़ी प्रतिकूलता हुई कमरे चल दिया तो ये कमजोरी साधु की जल्दी नहीं मिटती विचार पूर्वक जो दमन करे तो मिट जाती है। मनुष्य के लिए कोई असंभव बात नहीं है ये चाहे तो परमात्मा प्राप्ति कर ले जीवन मुक्त हो जाए दुनिया का उद्धार कर ले परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर ले तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले जीवन मुक्त हो जाए विदेह केवल हो जाए ये होने की सामर्थ्य है योग्यता है परंतु ये आसक्ति है ना भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध सब चित्त अपहृत हो गया उनमें भोग और ऐश्वर्य में वो बातें मैंने कितनी बनाओ, कितनी सुनो, कितनी सुनाओ, कोई काम नहीं करती। इस बात से बड़ी सावधान रहो, इनमें फंसना नहीं है। ये भी वक्त पर जैसे काम आया वो काम ले लिया, परंतु यथावती निश्चितता नहीं। आज संपत्ति वालों के लिए कहा है कि व्यवसाय को कामोपभोग परमा यथावती निश्चितता, पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना यथावती निश्चितता। ये निश्चित करने की यही बात है, कमाओ खाओ भोग भोगो बस, यही निश्चय हो गया है। ये बड़ा भारी खतरा है, ऐसा निश्चय होने वाले आदमी का सुधार होना बड़ा कठिन है। कभी चोट लगे, कभी विपरीत अवस्था आए, भगवान की कृपा हो जाए, दुख पड़ जाए अचानक, तो चेत होगा नहीं तो चेत नहीं होगा, बड़ी कठिन बात है। तो हम तो अपने भाई बहन से कहते हैं कि आप ऐसे करो कि भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ। अपनी शक्ति नहीं है कि हम इनका त्याग कर दें, त्याग करने का विचार भी नहीं होता। विचार होता है कि मर जाए क्या करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। भीतर में ऐसी बात होती हुई है तब तो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मनुष्य को चाहिए कि इसमें अगड़ी बढ़ो और ये उद्देश्य छोड़ो, भोग भोगने का और संग्रह करने का उद्देश्य न हो जाए जीवन में, आराम भोगने का तो काम सुध सकता है, नहीं तो आराम का उद्देश्य हो जाएगा फिर तो ठिकाना लगना ही मुश्किल है। स्वास्थ्य हे नाथ पुकारता रहे और अच्छा सत्संग करता रहे, रामायण गीता है ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करता रहे, गहरा उतर करके इस विषय को समझे तो ठीक हो जाता। अच्छे विरक्त त्यागी कोई पुरुष हो, कोई मिल जाए तो उनके संग से बड़ा लाभ होता है। योग वृष्टि में चार बातें आई है, अध्यात्म विद्याधिगम, पारमार्थिक तत्व का अनुभव हो जाए, अपने जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाए, एक नंबर की बात। फिर उसे मन वशभूत हो ही जाता सत्य, और वो ना हो तो साधु संग में उसे संतों का वास्तव भरी त्यागियों का संग हो, वो भी ना मिले तो वासना का त्याग, और वो भी ना कर सको तो प्राणायाम। ये चार बताइए, सबसे नीचे ही प्राणायाम को इससे भी होता है ठीक, परंतु वास्ता का त्याग किया तो बढ़िया है, सत्संग मिल जाए अच्छे संतों का तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। स्वास्थ्य अपना स्वभाव शुद्ध स्वभाव है, उसको पहचानना है, उसको बनाना है, और ये जो काम क्रोध लोभ आदि का स्वभाव है इस स्वभाव को छोड़ना है। नारायण 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 नारायण, ये बात है।